आस्तिक के ये कहते ही शारदा जी के चेहरे का रंग उड़ गया और वो घबराहट के मारे आस्तिक को देखने लगी, जैसे कि उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। राजा साहब ने अपना एक हाथ उठाकर तुषार से कहा, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें कब से इस प्रिंटिंग प्रेस की बागडोर अपने हाथ में लेनी है। तुषार हाँ में सिर हिलाते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही शारदा जी आस्तिक को देखकर कहती हैं, राजा साहब, हमारे बीच एक सौदा हुआ था और मैंने आपकी बात मानकर अपनी बेटी की शादी आपसे करवाई है, वो भी इसलिए ताकि आप ये प्रिंटिंग प्रेस बंद न होने दें, लेकिन आपने तो मेरी प्रिंटिंग प्रेस पर कब्जा ही कर लिया है। आस्तिक ने घूर कर शारदा जी को देखा और कहा, कब्जा? तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी इस छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस पर कब्जा करने के लिए खुद आना पड़े? इतनी इम्पॉर्टेंट है ये प्रेस? मैंने इस पर कोई कब्जा नहीं किया है, बल्कि ये प्रिंटिंग प्रेस मेरी है, क्योंकि ये शेयर्स मेरे नाम है। शारदा जी घबराते हुए कहती हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? आस्तिक के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, इस प्रिंटिंग प्रेस के 90% शेयर्स अरुणिमा के नाम है, जो उसने खुशी खुशी मेरे नाम ट्रांसफर कर दिए हैं। शारदा जी के हाथ काम गए थे ये सुनते ही। वो हैरानी से आस्तिक को देखती हैं और उसकी बातों को समझने की कोशिश करती हैं। शारदा जी के मन में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन इस समय उन्हें अपनी कंपनी को बचाना था, इसीलिए उन्होंने अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, राजा साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या अरुणिमा से कोई गलती हुई है? क्या उसने आपके साथ कोई बदतमीजी की है? देखिए, अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो मैं उसे समझा दूंगी। वो बच्ची है, ना समझ है, पर आप तो समझदार है ना, आप अपना दिल बड़ा रखें, उसकी गलती को नज़रअंदाज कर दीजिए। आस्तिक के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी और उसने एक मजाकिया अंदाज में अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, अरुणिमा आपसे बात करने की कोशिश कर रही है, क्या आपके पास इतना भी समय नहीं है कि उसके कॉल का रिप्लाई करें? शारदा जी सकपका गईं और उन्होंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल बात ऐसी है कि मैं बहुत बिजी थी, इसीलिए अरुणिमा से बात नहीं कर पाई। आस्तिक के चेहरे पर व्यंग्य की मुस्कान आ गई और उसने कहा, इतनी बिजी हो गई कि अपनी बेटी से बात करने का टाइम भी नहीं मिल पाया आपको? शारदा जी ने नजरें चुराते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जल्दी ही उससे बात कर लूंगी। आस्तिक अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है, जरूरत नहीं है, वैसे भी आपकी बेटी रानी की तरह महलों में रहती है, वो राज करती है, आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूं ना? शारदा जी ने कहा, राजा साहब, आप तो रिश्ते में मेरे दामाद भी लगेंगे, आपको नहीं लगता कि मेरी कंपनी बंद करवाकर आप सही नहीं कर रहे हैं? अगर अरु को इस बारे में पता चल गया तो वो आपसे नाराज हो जाएगी। आस्तिक के चेहरे पर एक हंसी आ जाती है और वो हंसते हुए कहता है, सासू माँ, मैंने अभी अभी आपसे कहा ना कि आप मेरी बीवी की फिक्र करना छोड़ दीजिए, उसके लिए मैं हूं ना? और जहां तक बात रही सास और दामाद के रिश्ते की, तो उसी का लिहाज रखते हुए मैंने सिर्फ इस कंपनी का चेयरमैन किसी और को बनाया है, वरना मैं चाहता तो ये कंपनी बंद भी हो सकती थी, क्योंकि देखा जाए तो इस कंपनी का शेयर होल्डर मैं हूँ और यहाँ के ओरिजिनल पेपर तुषार मिश्रा के पास हैं। वो तो हमारा बड़प्पन है कि हम आपको यहाँ से निकाल नहीं रहे हैं, लेकिन अब से आपको तुषार मिश्रा के अंडर ही काम करना होगा, वरना हम चाहते तो आपके यहाँ से निकल भी सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। अब इसे आप हमारे रिश्ते की लिहाज ही समझिए। शारदा जी हैरानी से आस्तिक को देखते रह गई। उसे आस्तिक से ऐसी उम्मीद नहीं थी, उसे तो लगा था कि आस्तिक उसका दामाद बन जाएगा तो उसके बाद उसकी कंपनी की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा, लेकिन यहाँ तो आस्तिक नहीं उसकी कंपनी उनसे छीन ली थी और किसी और को वहाँ का मालिक बना दिया था। शारदा जी हैरानी से आस्तिक को देखते रह गईं और आस्तिक वहाँ से अपने चेहरे पर जीत की मुस्कान लेते हुए चला गया। एक हफ्ता हो गया था, अरुणिमा अभी भी आस्तिक के कमरे में थी, लेकिन ये गुजरा हुआ एक हफ्ता उसके लिए काफी कुछ नया था। उस हादसे के बाद अरुणिमा दो दिन के बाद होश में आई थी। तब सविता आंटी ने उसे बताया था कि वो बेहोश हो गई थी और उसकी हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा था। कीर्ति और प्रणाली भी अरुणिमा से मिलने आए थे। कीर्ति ने फिर भी अरुणिमा से कुछ बात तो की, लेकिन प्रणाली तो जैसे वहां पर फॉर्मेलिटी के लिए आई थी। उसने एक नज़र अरुणिमा को देखा और कहा, ठीक ही लग रही है, और उसके बाद वो वहां से चली गई थी। पृथ्वी हर दूसरे दिन आता और अरुणिमा को हेल्थ चेकअप करता था। अरुणिमा को सबके व्यवहार ठीक ही लगा था, सिवाय आस्तिक के। आस्तिक देर रात तक वापस आता और कपड़े बदलकर कहीं चला जाता। अरुणिमा होश में आने के दूसरे दिन से ही फर्श पर सोने लगी थी, क्योंकि उसे एक बार फिर से आस्तिक के हाथों से मार नहीं खानी थी। लेकिन आस्तिक के कदमों की आहट अरुणिमा पहचानती थी। जब आस्तिक कमरे में आता और अरुणिमा को फर्श पर सोया देखता तो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता था। वो चुपचाप अलमारी से जाकर अपने कपड़े लेता और बाथरूम में चेंज करके फिर कहीं चला जाता। एक हफ्ते तक अरुणिमा इसी बात को नोटिस करती रही कि आस्तिक रोज रात को पीकर आता था, लेकिन वो अरुणिमा के पास नहीं आता, बल्कि अगले दिन सुबह फिर कमरे में आता और तैयार होकर ही वापस कमरे से बाहर निकलता था। एक हफ्ते बाद तो अरुणिमा भी नाश्ते के लिए नीचे आने लगी, लेकिन वो सबके साथ टेबल पर बैठकर नाश्ता नहीं करती थी, बल्कि वहीं जमीन पर दरी पर बैठकर ही नाश्ता करती थी। आस्तिक ने गुजरे एक हफ्ते में अरुणिमा की तरफ देखा भी नहीं था और न ही उसके ऊपर ध्यान दिया था, लेकिन उसके ऑर्डर को अभी भी फॉलो किया जा रहा था। अरुणिमा को खाने में चिकन ही मिलता था, लेकिन अरुणिमा और पृथ्वी अच्छी तरह से जानते थे कि वो चिकन नहीं है, इसीलिए अरुणिमा उसे बिना किसी झिझक के खाने लगी थी और सबको यही लगा कि अरुणिमा को अब नॉनवेज खाने की आदत हो गई है। आज रात फिर अरुणिमा फर्श पर लेटी हुई थी। रात के करीब 12 बजने को आए थे और आस्तिक लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने कमरे में दाखिल होता है। कमरे में आने के साथ ही उसकी नज़र फर्श पर सो रही अरुणिमा पर जाती है और हमेशा की तरह वो अरुणिमा को इग्नोर करता हुआ अलमारी के पास जाता है। अलमारी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में जाता है। अरुणिमा धीरे से अपना चादर हटाकर मुंह बाहर निकालती है और बाथरूम के बंद दरवाजे को देखती है। जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज़ आती है, अरुणिमा फिर से चादर में अपना मुंह छुपा लेती है। आस्तिक एक नज़र अरुणिमा को देखकर वापस कमरे से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही अरुणिमा उठकर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि राजा साहब हर रात जाते कहाँ हैं।